रहे मुजरमीन तो वो हमेशा जहन्नुम के अजाब में मुबतला रहेंगे, कभी इनके अजाब में कमी ना होगी और वो इसमें मायूस पड़े हुए होंगे। सोचिए, जेल के कैदी जेन में आते हैं, इन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे, इनकी पुकार सुनिए जरा, अरबी में पढ़ती हूँ, वनादौ या मालिक, मालिक कौन है? जहन्नुम के पुलिसमैन, गार्डमैन, फरिश्ते का नाम है। लियक्दी अलैना रब्बुक, ए मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। देखिए क्या कह रहे हैं, तेरा रब, अपना नहीं समझा था ना, कहते हैं कि अपने रब से को कि हमें मौत दे दे, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे के मर जाए, इतने अजाब और बर्दाश्त नहीं होते। कोई बड़ा बीमार शख्स होता है ना, कभी आप देखें जिसको कैंसर है कुछ है, तो डॉक्टर को देख के रोता है, मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे नींद का इंजेक्शन दे दो। ये तरसेंगे कि काश तेरा रब हमें मौत दे दे। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही ना गवार था। सच है ना, असल जंग जो है ना, ये हक और बातिल की जंग है। क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा तो हम भी अपने पास एक फैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी रास की बातें और इनकी सरगोशियाँ सुनते नहीं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास लिख रहे हैं। इनसे कहो अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और ज़मीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, इन सारी बातों से जो ये लोग इसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहाँ तक कि वह अपना वो दिन देख लें जिसका इनको खौफ दिलाया जाता था। वही एक आसमान में भी खुदा है और ज़मीन में भी खुदा, वही अलीम और हकीम है, बहुत बाला बरतर, वो जिसके कब्ज़े में आसमान और ज़मीन और इसकी हर चीज़ की बादशाही है, और जो ज़मीन और आसमान के दरमियान पाई जाती है वही क़्यामत की घड़ी का इल्म रखता है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। इसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शिफात का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। और इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल के इस कौल की कि रब ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। कितना दर्द है इन आयतों में, जिनको नहीं मानना होता ना वो सुन के भी नहीं मानते। करो के इन लोगों के साथ फसफ अनहुम वकुल सलाम फसौफ़ यालमून। अच्छा है नबी इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अन करीब इन्हें मालूम हो जाएगा। धमकी है कि जो करते थे करने दो, इनकी ज़िंदगी इस तरह के कामों में लगी थी, लगने दो, कल लग पता जाएगा। हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना लग पता जाएगा, सारी ज़िंदगी मनमानियाँ की, बातें मानी, अपनी मर्ज़ी की, तो ज़रूरत थी इस बात की कि आज इनको पता चल जाए कि हम कहाँ बैठे हैं। तो ये थी सूरत ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ कहते हैं डेकोरेशन को, ऑर्नामेंट्स जैसे ज़ेवरात, एक ख़ास हद पे जाके सोने को भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत के अंदर हमें यही पैगाम दिया कि दुनिया की चीज़ें भी अच्छी हैं लेकिन इसके पीछे अपनी आखरत को ख़राब करना अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत दुखान, हामीम, वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बेह करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फ़ैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। इस आयत में एक ख़ास रात की बात हुई जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और वो रात लैलतुल कदर की रात थी। बहुत सारे लोग इस आयत के बारे में ये समझते हैं कि ये 15 शाबान के बारे में, हालांकि सूरतुल क़दर और सूरत बकरा की आयत से ये बात समझ आ जाती है कि कुरान पाक जो है ये रमज़ान में नाजिल हुआ था। तो इस रात के बारे में ہم سب کو بہت کانشیس ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ شیطان وہ چیزیں تو عام کروا دیتا ہے کہ جس کی شاید سنت ہو بھی نہ اور ہے بھی تو کوئی اس کے اندر پورا یقین نہ ہو, لیکن لیلۃ القدر کی راتیں, بعض لوگ اس کو عبادت کی رات تو سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی رات وہی رات ہو, اور آپ کو پتہ ہے یہ پھر وہ رات ہے کہ جس میں پتے لگتے اور پتے جھڑتے ہیں. جتنی باتیں آپ شب برات کے ناطے سے 15 شعبان کو سنتے سناتے آتے ہیں, اس میں سے اکثر چیزیں جو ٹھیک ہیں تو وہ لیلۃ القدر کے بارے میں. اور اس رات کی خاص نشانی سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی. اور اس ایک رات میں کوئی ایسی گھڑی آ سکتی ہے جس میں کی بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں نا, آپ دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کیا ہے, یہ قرآن پاک کے نزول کی کے موقع کی یادگار ہے. اس لیے کبھی بھی موقع مل جائے اگر ایسی راتوں کو پانے کا, تو اس کے اندر ضرور کثرت سے قرآن پاک کے اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ جس چیز کا موقع ہوتا ہے پھر اسی کو اس کے اندر زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت فیصلہ تھا انسانیت کے لیے کہ انہوں نے اتنا پیارا کلام اس رات میں نازل کیا. کون رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. کوئی معبود اس کے سوا نہیں, وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین ہی نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا, یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں, ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا, پھر بھی اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں, تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. انسان بڑی ضدی ہے, اپنی خو نہیں چھوڑتا. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, میں تمہارے دا سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. کتنا دو ٹوک انداز ہے, مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو پھر اپنا کام کرو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا, یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا, اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سوچیے ذرا موسیٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی, آگے سمندر اور پیچھے دشمن, اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کا پیچھا ضرور کیا جائے گا. یعنی کیا پتا چلا کہ دشمن آپ کی تاک میں ہے. آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کے جتنے بھی قصے ہم سنتے سناتے ہیں, ہم تو یہاں بڑا مزہ لے کے پڑھتے ہیں اور بڑے پرسکون ماحول میں لیتے ہیں, لیکن آپ ذرا انبیاء کرام کے اس منظر کو تو یاد رکھیں کہ جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا تھا کہ اب یہ کام کرو اور اس کا یہ بدلہ ملے گا, ہم جیسے ہوتے تو وہیں ریزائن کر کے آگے ہوتے کہ نہیں اللہ ہم سے نہیں, اتنی مشکلیں سہی جاتی, لیکن نبی اللہ کے حکموں پہ سمندروں میں کود گئے. اس سے بڑا اور کیا امتحان ہوگا کسی کا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے, کتنے ہی عیش و آرام کے سر و سامان تھے جس میں وہ مزے کر رہے تھے, ان کے پیچھے دھرے رہ گئے, یہ ہوا ان کا انجام. یہی ہوتا ہے نا ہر انسان کا. اب دیکھیے کہ دیکھا جائے تو یہاں فرعونیوں کا انجام ہے, لیکن ہر انسان جب جاتا ہے تو کیا اس کی چیزیں اس کے ساتھ جاتی؟ اس کا گھر, اس کے باغ, اس کے کھیت, اس کی دکانیں, سب پیچھے رہ گئے. میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر بالفرض یہ حکم ہوتا کہ جو شخص مر جائے ساتھ ہی اس کا سب سامان بھی دفن کر دو, نہ کوئی دیکھے نہ روئے, तो फिर आप सोचे कि कब्रिस्तानों की जगह मिलती? अभी तो चंद फुट की जगह है इतनी महंगी, और अगर पूरे पूरे घर दफन करने होते तो आप सोच सकते हैं कि फिर कब्रें कैसी होती। बड़ा दर्द आता है इन आयतों को पढ़कर। अल्लाह ताला कहते हैं कि सब चले गए और हमने दूसरों को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। ज़रा सोचें, कोई चीज़ आपको जो बड़ी पसंद हो अपनी, कोई जेवर, कपड़ा, मशीन, घर की चीज़, उसके बारे में सोचें कि मेरे बाद ये किसको मिलेगी? मुझे तो नहीं मिलेगी अगर मैं इस दुनिया में छोड़ के चली गई। बाज़ लोग तो बेचारे खुद बरतते भी नहीं हैं, लेने का शौक़ होता है संभालने का, और बाद में लोग रोते हैं, हाय ये भी था, बरत ना सकी, ये तो पहना नहीं, ये तो ओढ़ा नहीं। और जो लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं ना, उनका हाल क्या होता है? फमा बकत अलैहिमुस्समा उवल अर्दु फमा कानु मुनज़रीन, फिर ना आसमान इन पर रोया न ज़मीन रोई। ये कब होता है? अल्लाह के नबी के एक हदीस का खुलासा है, आपने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदा दुनिया से जाता है तो आसमान के वो टुकड़े रोते हैं जहाँ से उसके नेक अमाल ऊपर चढ़ते थे और उसका रिस्क उतरता था, क्या वो बंद हो गया, और ज़मीन के वो टुकड़े रोते हैं जहाँ पे वो सजदे करता था, इबादतें करता था। पता नहीं हमारे बाद हमारी कुर्सियों ने रोना है, हमारे कारपेट ने रोना है, हमारे कंप्यूटर्स ने रोना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को इसका वारिस नहीं करके जाएंगे, दूसरों को ये सिखा के नहीं जाएंगे, तो हमारी चीज़ें बाद में पता नहीं किसने लेनी किसने नहीं लेनी। इसलिए हर इंसान को नज़र रखनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जब मैं मरूंगी तो क्या मुझ पे आसमान रोएगा और ज़मीन रोएगी, और ज़रा सी भी मोहलत इनको ना दी गई। इसी तरह बनी इसराइल को हमने सख्त ज़िल्लत के अज़ाब फिरौन से निजात दी, जो हद से गुजर जाने वालों में फिल वाक़े बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था, और उनकी हालत जानते हुए उनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह दी, और इन्हें ऐसी निशानियां दिखाई जिनमें सरीह आसमाइश थी। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, इसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। उन्हें कहते थे कोई नहीं, मर के जीना, ऐसी बातें हैं। पहले हमारे बाप दादा को तसलियाँ दी जाती थी और अब हमें दी जाती हैं। इनको कहानी सुनाओ, किसकी? ये बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के लोग और उससे पहले के लोग? हमने इनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे, कि आसमानों ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी। वमा खलकना हुमा इल्ला बिलहक, हमने इनको बरहक पैदा किया है मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले के दिन का है, वो दिन जब कोई अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के भी कुछ काम न आएगा और न कहीं से इन्हें कोई मदद पहुंचेगी। किसी ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जिसको आपसे बड़ी मोहब्बत हो और जिससे आपको बहुत हो। मुख्तलिफ रिश्तों में होता है, बाज़ दफ़ा मामू को भतीजियों से बड़ी मोहब्बत होती, भांजियों से मोहब्बत होती है, बाज़ दफ़ा चचा और भतीजी, फुफ्फो, खाला, भाई, बहन, किसी अपने सबसे अजीज का सोचें जो दुनिया में आपके ज़रा सी मुश्किल में पड़ते ही फ़ौरन काम में आ जाता है और वो कहता है कोई काम हुआ मुझे बताना। अल्लाह कह रहे हैं उस दिन कोई अजीज करीब रिश्तेदार किसी के काम नहीं आएगा, कोई मदद भी नहीं करेगा। आज दुनिया में किसी पे कोई मुश्किल आती है तो 10 लोग उठ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, वहाँ कोई ना करेगा। कौन मदद करेगा वहाँ? इल्ला मर रहीम अल्लाह, मगर वो जिस पर अल्लाह ही रहम करे, वो ज़बरदस्त और रहीम है। क्या खाएंगे जहन्नमी? इमेजिन करें और साथ ही साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करें। इन शजरत ज़क्कूम ताअमुल असीम कलमुह यक़ली फिल बुतून, ज़क्कूम का दरख्त गुनाहगार का खाना होगा, तेल की तलछट जैसा पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। कभी आप बहुत स्पाइसी खाना खा लें, मिर्चें खा लें, बाद में क्या होता है? पूरी स्टमक की नाली जलती है और स्टमक जलता है, फिर जब वो अंतड़ियों में पहुंचता है तो पेट में मरोड़ उठते हैं। क्या खाते हैं? मिर्चें, और इतनी ही खा सकते हैं ना जितनी बर्दाश्त करें, कुछ चम्मच भर के मिर्चों की मुँह में तो नहीं डालता। लेकिन जहन्नमियों को जो खाना मिलेगा ज़क्कूम, जहाँ से गुजरेगा उनकी अंतड़ियों को काटता जाएगा, और रिवायात में आता है कि गंदगी के रास्ते से जिस्म में से उसकी अंतड़ियाँ गिरेंगी। اور بعض جگہ تو انسان اسی کے گرد پھر چکر کھا رہا ہوگا۔ پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ اور سب سے بڑی بات کے اوپر سے تانو تشنی، ذق انک انت العزیز الکریم۔ چک اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے نا تو، یعنی بڑے دنیا میں اچھے کام کرتا تھا، بڑے اچھے کھانے کھاتا تھا، بڑی عزت تھی تیری، آج چکھ تجھے کیا مل رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آنکھوں چشم عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس موت وہ جو دنیا میں آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں کچھ مل بھی جاتا ہے نا تو ساتھ ہی یہ غم لگ جاتا ہے کہ اللہ اب چھن نہ جائے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد تو عذاب ہوں گے، جنت میں جانے والوں کا سوچو کہ جب پتہ چلے گا کہ وہاں موت نہیں۔ اور پیچھے بھی روایت بتا چکی ہوں کہ اگر جنتی خوشی سے مر سکتے تو یہ بات سن کے مر جاتے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آنی۔